ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने जापान प्रवास के दौरान विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की स्वच्छ भारत मिशन शहरी के कार्यों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि कोयला और फ्लाई ऐश का परिवहन वाहनों को ढक कर किया जाए और नगरीय प्रशासन विभाग ने रैलियों, आम सभाओं और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित SAS सनावा कंपनी लिमिटेड के राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगी बल्कि उच्च तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेंगी। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि जापान यात्रा के दौरान विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
जापान यात्रा बहुत अच्छी रही। NTT के CEO से मुलाकात हुई, क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात हुई है और निवेश के संबंध में उनसे चर्चा हुई है और 3 MOU साइन हुए हैं। पर इससे निश्चित रूप से हमारे देश को और हमारे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का दौरा करेंगे। श्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ल्ड एक्सपो के जरिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और औद्योगिक प्रगति को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने शहरी स्वच्छता के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्षित स्वच्छता इकाइयों के चिन्हांकन तथा स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था और स्वच्छता सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री साव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर प्रदेश में भी राज्य स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता नगरी निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा।
हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का स्वच्छता में बहुत अच्छा स्थान है देश के अंदर। हमने अपने राज्य का भी स्वच्छ शहर प्रतियोगिता की तैयारी कर ली है। अगले महीने से उसे प्रारंभ करेंगे। सर्वे प्रारंभ होगा एक एक निकाय का, अलग से उन शहरों को पुरस्कृत करेंगे, प्रेरित करेंगे।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोयला और फ्लाई ऐश का परिवहन वाहनों को ढक कर किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बगैर तारपोलिन से ढके वाहनों को परिवहन की अनुमति न दी जाए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि कोयला और फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टरों को संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की प्रमुख सड़कों की खराब स्थिति और उसके रखरखाव की में बरती जा रही देरी तथा लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश BD गुरु की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 सितम्बर को होगी। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने देशभर के 14 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय अग्रवाल का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा गया है। केंद्र सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से स्प्री योजना की शुरुआत की है। यह विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत ESIC रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग स्थित अपने क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों में जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क और संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य लाखों असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई दायरे में लाना है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सहायता, आर्थिक सुरक्षा और अन्य सामाजिक लाभों का लाभ मिल सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेश डेका अपने खैरागढ़ प्रवास के दौरान चंदेली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और महिला स्वसहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, खाद्य सामग्री, परिधान और ग्रामीण उद्यमिता के मॉडल की प्रशंसा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वसहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है और सरकार द्वारा इन समूहों को लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य प्रायोजित विभिन्न योजनाओं और हितग्राहियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वसहायता समूहों को कचरा संग्रहण के लिए गार्बेज रिक्शा भी प्रदान किए गए। खैरागढ़ प्रवास के दौरान राज्यपाल ने सोनपुरी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सोनपुरी को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 5,000 रूपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने रैलियों, आम सभाओं और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा, सड़कों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के निदेशक रोमिजियस एक्का ने बताया कि नगरीय निकायों में सड़कों, फुटपाथ या सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों, अस्थायी संरचनाओं, धरना, आमसभा और रैली में एक समय में 5,000 वर्ग फीट में अधिकतम 500 और उससे अधिक क्षेत्र में 500 से अधिक लोगों के ठहरने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के रैलियां, आम सभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
सड़कों में बाधा का प्रतिषेध करने के प्रावधान हैं, उसी के संबंध में दो भागों में निर्देश जारी किया है। पहला है छोटे आयोजन जो होते हैं 500 व्यक्तियों तक के लिए और 500 से अधिक व्यक्तियों के जो जमाव होता है के लिए निर्देश हम लोगों ने जारी किया है।
श्री एक्का ने बताया कि आयोजकों को मानचित्र का लेआउट, आयोजन स्थल का विवरण, तिथि और अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज FIR पर चल रही जांच को रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने इसके लिए अनुमति दे दी है। बीजापुर जिले में लगातार बारिश के कारण इंद्रावती सहित अन्य नदी नाले उफान पर हैं। जिले के बीजापुर और भैरमगढ़ ब्लॉक में नदी पार करते समय दो ग्रामीण बह गए। नगर सेना के जवान इन ग्रामीणों की तलाश में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से बाढ़ग्रस्त इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। वहीं दंतेवाड़ा में बारिश के कारण डंकनी नदी के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बालपेट के खालेपारा में नाले के तेज बहाव में फंसे 30 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया है। जिला प्रशासन ने लोगों को उफान वाले नदी नालों को पार न करने की सलाह दी है। उधर जांजगीर चांपा में लीलागर नदी में बहे एक युवा का शव SDRF और DDRF की टीम 26 घंटे बाद बरामद कर लिया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। हर घर मुनगा अभियान के तहत रायपुर जिला प्रशासन और महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और हितग्राही के परिवारों को मुनगे के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा साइबर ठगी की घटनाओं में जागरूकता लाने के लिए रायपुर से प्रदेश भ्रमण पर निकला साइबर सतर्क रथ जांजगीर पहुंचा। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर धोखाधड़ी के बचाव के बारे में जागरूक किया गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर फर्जी अंकसूची के आधार पर की गई भर्ती के मामले में पुलिस ने स्कूल संचालकों और फर्जी अंकसूची बनाने वालों को गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले में लैलुंगा वन परिक्षेत्र में 27 हाथियों के दल ने 3 कच्चे मकानों को तोड़ दिया। वहीं किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के जापान प्रवास के दौरान विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की स्वच्छ भारत मिशन शहरी के कार्यों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि कोयला और फ्लाई ऐश का परिवहन वाहनों को ढककर किया जाए और नगरीय प्रशासन विभाग ने रैलियों, आमसभाओं और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।